एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो कोई आसान सफर नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर शायद भूल जाना नामुमकिन।
बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं ज़र्जी कुसिंस्की के 1965 में आए उपन्यास द पेंटेड बर्ड।
और ये उपन्यास जब आया था तो साहित्य जगत में जैसे एक तूफान आ गया था। इसकी कहानी दिल दहला देने वाली है।
हाँ,
और इसकी भाषा तो जैसे किसी सर्जन का चाकू हो, एकदम ठंडी, सटीक और भावनाओं से बिल्कुल परे।
और शायद यही बात इसे और भी भयानक बनाती है। तो कहानी का समय है दूसरा विश्व युद्ध और जगह है पूर्वी यूरोप का कोई गुमनाम सा देहाती इलाका। हमारा मुख्य किरदार एक छोटा बच्चा है, करीब 6 साल का, जो वहां अकेला भटक रहा है।
और कोसिंस्की ने तो पहले दावा भी किया था कि ये उनके अपने बचपन की कहानी है।
हाँ, जो उन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान झेली थी। बाद में इस पर बहुत विवाद भी हुआ कि ये सच है या कल्पना।
लेकिन मुझे लगता है ये सवाल शायद उतना जरूरी नहीं है, चाहे ये एक इंसान की आप बीती हो या लाखों लोगों के दर्द से जन्मी कल्पना हो।
सही कहा।
ये उपन्यास इंसानियत के सबसे अंधेरे कोनों की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जिसे देखकर सच में रूह कांप जाती है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस मुश्किल सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी खुलती कैसे?
कहानी की शुरुआत ही एक उम्मीद के टूटने से होती है। बच्चे के माँ बाप जो शहर में रहते हैं, उसे युद्ध की मार से बचाने के लिए एक बहुत दूर के गांव में एक बूढ़ी औरत माटा उनके पास छोड़ जाते हैं।
ये सोचकर कि वो वहां महफूज रहेगा।
हाँ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही हफ्तों में माटा की मौत हो जाती है और वो 6 साल का बच्चा उस बेरहम दुनिया में अकेला पड़ जाता है। और यहीं पर उसकी पहचान, उसका जो हुलिया है, वो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है ना?
उसके काले बाल, उसकी गहरी काली आंखें, वो उस इलाके के गोरे निजी आंखों वाले किसानों से एकदम अलग दिखता था।
तो वो उसे शक की निगाह से देखते हैं।
हाँ, कोई उसे जिप्सी कहता है, कोई यहूदी, मतलब वो बाहरी है, पराया है, और शायद कोई अपशकुन भी।
और यहीं से उसके भटककन का वो सिलसिला शुरू होता है जो हमें इंसानियत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है कि समाज में जो अलग है वो फौरन खतरनाक कैसे मान लिया जाता है।
सही।
ये उपन्यास कोई जंग के मैदान की कहानी नहीं है।
नहीं,
इसमें टैंक या फौजी नहीं है।
नहीं,
इसमें वो आम लोग हैं जिनके अंदर छिपे अंधविश्वास और क्रूरता को युद्ध ने जैसे एक खुला मैदान दे दिया है।
हाँ, उसका हर नया पड़ाव पिछले वाले से ज्यादा भयानक साबित होता है। वो एक गांव से दूसरे गांव भटकता है बस एक छत और दो वक्त की रोटी के लिए।
पहले वो ओल्गा नाम की एक औरत के पास पहुंचता है।
हाँ, जिसे गांव वाले डायन मानते हैं। वहां वो अंधविश्वास की क्रूरता को अपनी आंखों से देखता है।
लेकिन शायद सबसे ज्यादा दहलाने वाला मंजर तो वो चक्की वाले के यहाँ आता है।
उफ, वो पढ़ते हुए सांस रुक जाती है। चक्की वाला एक नौजवान लड़के से बहुत जलता है जिससे उसकी पत्नी पसंद करती है,
और वो ईर्ष्या में पागल हो जाता है।
पूरी तरह से। एक दिन वो उस लड़के को पकड़ता है और एक चम्मच से उसकी दोनों आंखें निकाल देता है।
हे भगवान।
और हमारा नन्ना किरदार, वो बच्चा, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है।
ये कल्पना से भी परे है। और शायद ये वो पल है जहां हम समझते हैं कि ये लड़के के बड़े होने की कहानी नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये उसके अंदर की इंसानियत के धीरे धीरे मरने की कहानी है। वो इस वैशीपन से बचने के लिए खुद वैशी बनना सीखता है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात लेख से होती है, जो पक्षी पकड़ता है, वो किरदार, वो थोड़ी उम्मीद जगाता है ना?
हाँ, कुछ देर के लिए तो जगाता है। लेख उसे बाकी लोगों की तरह मारता पीटता नहीं, उसे थोड़ा स्नेह देता है, पर वो उसे एक ऐसा सबक सिखाता है जो उस बच्चे की आत्मा पर हमेशा के लिए छप जाता है।
और यहीं से इस उपन्यास का नाम द पेंटेड बर्ड सामने आता है।
बिल्कुल।
हाँ, और वो सबक ही इस उपन्यास का दिल है ना? वो रंगे हुए पक्षी की कहानी, वो सिर्फ एक घटना नहीं है।
नहीं, वो उस लड़के की पूरी जिंदगी का आईना है।
वो क्या था बताइए?
तो लेख एक दिन एक कौवे को पकड़ता है, फिर वो उसके पंखों पर कई तरह के चमकीले भड़कीले रंग लगा देता है, नीला, लाल, हरा।
अच्छा,
वो बेचारा पक्षी अब अपने झुंड जैसा नहीं दिखता, वो एक अजूबा बन जाता है। फिर लेख उसे आजाद कर देता है।
और वो पक्षी अपने झुंड की तरफ उड़ता है।
हाँ, खुशी खुशी।
लेकिन
उसका झुंड उसे अपनाने से इनकार कर देता है। इनकार ही नहीं करता, वो उसे एक बाहरी हमलावर, एक राक्षस समझते हैं। सारे कौवे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं।
ओह,
वो उसे अपनी चोंचों से तब तक नोचते हैं जब तक वो लहूलुहान होकर आसमान से जमीन पर नहीं आ गिरता और मर नहीं जाता।
और वो बच्चा ये सब देख रहा है।
हाँ, और वो समझ जाता है कि ये उसी की कहानी है। वो भी एक रंगा हुआ पक्षी है जिसे उसकी अपनी ही प्रजाति सिर्फ इसलिए मार डालना चाहती है क्योंकि वो अलग दिखता है।
और जब हम ये सोचते हैं कि कुसिंस्की ने खुद एक यहूदी बच्चे के तौर पर हॉलोकॉस्ट को झेला था, तो ये रूपक और भी ज्यादा, मतलब व्यक्तिगत और दर्दनाक हो जाता है।
ये एक चीख जैसा लगता है।
हाँ,
और ये चीख जल्दी उस बच्चे की असलियत बन जाती है। क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं एक धार्मिक त्योहार के दिन।
उस दिन क्या होता है?
गांव वाले अपनी सारी मुसीबतों, अपनी गरीबी और युद्ध के लिए उस बच्चे को जिम्मेदार ठहराते हैं।
अच्छा।
वो उसे पकड़ते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और फिर उसे गोबर और गंदगी से भरे एक गड्ढे में फेंक देते हैं उसे डुबो के मार डालने के लिए।
ये सुनना ही इतना भयानक है।
एक पादरी उसे किसी तरह बचा तो लेता है, लेकिन इस भयानक सदमे का असर उस बच्चे के दिमाग पर ऐसा होता है कि उसकी आवाज चली जाती है, वो गूंगा हो जाता है।
उसका ये मौन, ये बहुत गहरा प्रतीक है। भाषा ही तो हमें एक दूसरे से, समाज से जोड़ती है। आवाज खोकर वो दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। एक तरह से ये मौन उसका किला भी है,
जो उसे बचाता है।
हाँ, जो उसे इस क्रूर दुनिया से बचाता है, और उसकी जेल भी जो उसे उसकी तन्हाई में कैद कर देती है।
और इसी कैद में उसे इंसानियत की कुछ बहुत अजीब झलकियां भी दिखती हैं। एक बात जो इस कहानी में मुझे हमेशा चौंकाती है वो ये है कि अच्छाई बुराई की हमारी जो परिभाषा है
वो पूरी तरह टूट जाती है।
हाँ,
आप उस जर्मन सैनिक की बात कर रही हैं?
हाँ, विडंबना देखिए, उसे थोड़ी सी दया एक जर्मन सैनिक से मिलती है।
वही सेना जो इस पूरे नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी।
बिल्कुल, उसका एक अफसर उसे गुस्से से भरे गांव वालों से बचाता है।
और फिर युद्ध के अंत में उसकी मुलाकात होती है सोवियत सेना के एक स्नाइपर मितका से।
और मितका, वो उसे एक अलग ही तरह का सबक सिखाता है, वो उसे हिंसा सिखाता है।
हाँ, लेकिन वो गांव वालों की अंधी वहशी हिंसा नहीं है।
नहीं, वो एक अनुशासित ठंडे दिमाग वाली हिंसा है, बदला लेने की कला।
बिल्कुल।
और लड़का सीखता है, वो अपने एक पुराने अत्याचारी से बदला लेता भी है।
अच्छा।
वो उसकी ट्रेन को पटरी से उतार देता है और ऐसा करते हुए उसे पहली बार ताकत का एहसास होता है।
ये कितना भयावह विचार है कि उसकी इंसानियत का पहला एहसास किसी को नुकसान पहुंचा कर आता है। तो अंत जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब वो बच्चा वापस तथाकथित सभ्य दुनिया में लौटता है, तब क्या होता है? क्या उसे शांति मिलती है?
अंत, अंत शायद कहानी के किसी भी हिस्से से ज्यादा दुखद है। उसे एक अनाथालय में भेज दिया जाता है जहां वो दूसरे बच्चों के साथ घुलमिल नहीं पाता। वो एक जंगली जानवर जैसा है
जिसे इंसानों के बीच रहना नहीं आता।
हाँ, एक दिन एक तनाव के पल में उसके मुंह से एक चीख निकलती है और चमत्कारिक रूप से उसकी आवाज वापस आ जाती है।
और फिर वो अपने माता पिता से मिलता है।
हाँ, उसके माता पिता भी युद्ध में बच गए थे, वो उसे लेने आते हैं, लेकिन सालों बाद होने वाला वो पुनर्मिलन बिल्कुल ठंडा, भावनाहीन होता है।
वो उनसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता।
कोई जुड़ाव नहीं। वो बच्चा उन दो अजनबियों से कोई रिश्ता महसूस नहीं कर पा रहा जो उसके माँ बाप होने का दावा कर रहे हैं। सालों के दर्द और अकेलेपन ने उसके अंदर के सारे रिश्ते, सारे जुड़ाव तोड़ दिए हैं।
और उपन्यास का आखिरी दृश्य क्या है?
आखिरी दृश्य में लड़का एक ट्रैम में बैठा है, शहर की भीड़ को देख रहा है। वो अब बोल सकता है, लेकिन उसके पास किसी से कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
वो हमेशा के लिए एक अजनबी, एक पेंटेड बर्ड बन चुका है। तो आखिर ये उपन्यास हमें छोड़ कहाँ जाता है? एक तरफ तो लड़का बच गया, पर क्या वाकई में वो बच पाया?
यही सवाल है।
उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे हैं, क्या वो कभी भरेंगे? कुसिंस्की इसका कोई आसान जवाब नहीं देते।
नहीं देते, वो बस क्रूरता का एक नग्न सच हमारे सामने रख देते हैं। और उनकी वो जो सपाट, बिना किसी भावना के लिखने की शैली है,
हाँ,
वो आपको किसी भी किरदार के लिए रोने का या सहानुभूति महसूस करने का मौका नहीं देती। वो आपको सिर्फ एक गवाह बनाती है जो चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा है।
और ये एक ऐसा अनुभव है जो पाठक की आत्मा पर निशान छोड़ जाता है।
हाँ, ये आपको मजबूर करता है कि आप पूछें कि अगर आप उन हालात में होते तो आप क्या करते।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सभ्यता और इंसानियत की परत कितनी पतली होती है, जिसे डर और नफरत किसी भी पल खुरच सकती है।
और ये एक चेतावनी भी है कि जब हम किसी को सिर्फ उसके अलग होने की वजह से अजनबी करार देते हैं तो हम अनजाने में उसी क्रूरता की नींव रख रहे होते हैं जो इस किताब में दिखाई गई है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।